और पीछे कुरैश वाले अबू बकर के घर पहुंच के दरवाजे खटखटा रहे हैं और असमा खड़ी है। अबू जहल आ गया, कहने लगा, किधर है तेरा बाप? अब मुझे क्या खबर? इस पे इतना झुंझला के हजरत असमा के मुंह पे थप्पड़ मारा उसने। आपकी बाली गिर गई, लोग आपकी तलाश में निकल गए, कितने लोग पीछे आए। और अबू बकर को महसूस हुआ कि कोई ढूंढने आ गया, तो कहा, अल्लाह के नबी जरा पीछे हो जाए। आपने फरमाया, ला तहज़न इन्नल्लाह, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, मत डरो, अल्लाह हमारे साथ है। ये कौन देता है जज्बे? यानी वो नेकियों के मिलने पे खुश होते थे, ऐसे जैसे हम नेमतों के मिलने पे खुश होते हैं, क्योंकि नेकी को नेमत समझते थे। तो अबू बकर सिद्दीक का हक कोई दे नहीं सकता। अस्मा कहती हैं कि अपने साथ जो नकद था वो भी ले गए, 5-6 हज़ार रुपये थे, और दादा के लिए वो चीज़ें छोड़ के जो आपको बताई हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, ईमान इसको कहते हैं। देखिए, अब जिंदगी से काफ़ी कुछ तो हम ले ही चुके हैं ना, ले चुके हैं ना। आप खुद भी देखिए, जिंदगी में वक्त के साथ साथ ख्वाहिशात बदल जाती है ना। बचपन में हम गुड्डियाँ खेलते थे या खिलौने, छोटे छोटे बच्चों को देखते हुए तो कितना बेवकूफ़ है प्लास्टिक के खिलौने से खेल रहा है, और आप ज़रा उसकी कैंडी तो लें फिर आंसू देकर टोप टोप, चाहे झूठे आंसू हों। बचपन में हम सभी ऐसे थे, फिर हम थोड़े बड़े हुए, हमें अच्छा लगा, हमने काफ़ी खाया पिया पहना ओढ़ा। सच बताएं कि अब वक्त के साथ खुद ब खुद हर चीज़ से दिल नहीं उठता जाता? इंसान वो जज्बातीपन निभा चुकता है अपना, 25-30 साल की उम्र तक वो जो आपके अंदर एक लाओबालीपन होता है, तो जाने का वक्त तो है, क्यों ना वो ईमान आ जाए जो अबू बकर वाला था। हम जाएं या ले जाए जाए, इससे बेहतर नहीं कि हम खुद ही चले जाएं। अपना सारा थोड़ा थोड़ा करके पहले ही अल्लाह को दे दें, अपनी सोचें, अपनी पसंद, अपनी नापसंद, ये ईमान, ये असल में ला इलाहा इल्लल्लाह। और आज हम बड़ी बड़ी बातें करने वाले, बड़े बड़े लोगों को शेर और क्या कहना चाहिए कि बड़े बड़े दर्द सुनाने वाले भी अमली मैदान में इस तरह नहीं कूदते जैसे अबू बकर गुजरते। 3 रातें उधर रहना जब दुश्मन सर पे है और 100 ऊंटों की कीमत है, और अस्मा बिन्नत है अबू बकर जो थी वो रोटियां पका कर लाती, अपने सर पे एक पटका सा बांधती और छुपते छुपाते आकर रोटी देती, और आमिर बिन फुहैर अपनी बकरियां लाते, उसका दूध पिलाया जाता। यानी अबू बकर की के घर का नमक भी अल्लाह के नबी ने खाया, और नबी सल्लम का ये सारा सफ़रे हिजरत जो था वो अबू बकर के माल पे हो रहा है। और अब वापसी पे जाते वो सारे नक्शे कदम मिटा जाते कि कहीं खोजियों को पता ना चल जाए इधर है, और फिर वहाँ जो भी हुआ वो तो हुआ। लेकिन असल बात यह है, किस तरीके से अल्लाह के नबी ने अबू बकर सिद्दीक को ट्रेन किया था? मेरा सवाल अक्सर ये होता है, अल्लाह के नबी के पास क्या गुर था? कौन सी यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए थे आप? यानी कहने का मतलब यह है कि नबी सल्लम के अंदर कोई ऐसी बात ज़रूर थी कि जिन्होंने अबू बकर को सिद्दीक बनाया, या फिर फितरी तौर पे अल्लाह ने उनके लिए रखा हुआ था। बहुत ज़्यादा देने वाले थे, और याद रखिए कि देकर भूल जाते थे, ये भी लिख लें, इसलिए थे सिद्दीक कि वो दे के भूल जाते थे, याद नहीं रखते थे, गिनते नहीं थे और याद कराते नहीं थे, जिसको कहते हैं कि डंके की चोट पे किधर रखा है बताओ, क्या किया उसका, किसके लिए रखा और किधर गया और कहाँ, हमें खबर दीजिए, माल ही वापस कर दें उनको, क्या करना है ऐसा माल लेकर, बरकत नहीं होगी उस माल में। नेकी कर दरिया में डाल। और सुराका बिन मालिक का जो मामला हुआ था वो भी इसी हिजरत के मौके पर था। तो अबू बकर सिद्दीक का जो दौर नबी सल्लम के साथ का ना, वो तो हम सब पढ़े हुए हैं, बचपन से लेकर आज तक पढ़ते गए। मदीना आने के बाद क्या हुआ था आपको पता? मवाखाते मदीना, आप में से किसको पता? चले इस पे भी बोनस गिफ्ट, अबू बकर की भाईचारगी किन से हुई थी? और अगर खबरों में आई भी को खबर पूछूं तो हमें याद होगी, किस मुल्क के, किससे ताल्लुक, किससे किससे, जैद बिन खारिजा, इनकी मवाखात हुई थी। और किस तरीके से अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हों ने मदीना आकर भी इस्लाम का साथ दिया, ये भी एक अपनी जगह लंबी कहानी है। इनके बाप जो अबू कुहाफा थे ना, ये 8 हिजरी में फ़तेह मक्का के मौके पे मुसलमान हुए थे। जब अबू बकर ने हिजरत की तो उस वक़्त वो मुसलमान नहीं हुए थे। जब ये मक्का फतह हुआ तो अबू बकर अपने बूढ़े बाप का हाथ पकड़कर अल्लाह के नबी के पास लाए और कहा, अल्लाह के नबी ये मुसलमान होना चाहते हैं। तो आपने कहा, तुम इन्हें क्यों यहाँ ले आए, मैं खुद वहाँ पहुँच जाता। यानी आपने अबू बकर के बाप को भी इज्जत दी थी। फिर इसी तरह फतह मक्का के बाद जंगे हुनैन हुई थी, तो अबू बकर के घर एक बच्चा था, अब्दुल्ला बिन अबू बकर, जख्मी हुए और फौत हो गए। यानी आपके बेटे का इंतकाल हुआ था इस जंग के मौके पे। उस जंग में जख्मी हुए और बाद में गिरे थे। फिर इसी तरह से याद रखिए कि नबी सल्लम की ज़िंदगी में अबू बकर को जो मदीना में हैसियत थी ना, आज की ज़ुबान में चीफ ऑफ दी जनरल स्टाफ, बहुत जैसे सब कोऑर्डिनेट थे नबी सल्लम के, वजारत कह लीजिए या कुछ भी, और नबी सल्लम की हिफाजत का काम इनको दिया गया था हर लिहाज से। फिर इसी तरह से अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हो गज़वाए तबूक तक, जो अल्लाह के नबी की ज़िंदगी का सबसे आखिरी गजवा था, सबसे बड़ा भी था और आखिरी भी था, तो अबू बकर सिद्दीक उसमें साथ रहे। और जिस मुआहदे के तहत मुशरिकीन को हरम से रोका गया था, बरात मिन अल्लाह ही, यानी जहाँ उनको रोक दिया गया था, तो अबू बकर को ये अल्लाह के हुक्म से खूबी और ऑनर हासिल है कि आप उस साल अमीरे हज थे। आपके ज़रिए से इतना बड़ा पैगाम अल्लाह के नबी ने दिलवाया कि आज के बाद कोई मुशरिक यहाँ ना आए। हाँ, इनकी माइयत या लोगों की तसल्ली के लिए हज़रत अली को साथ भेज दिया था। और इसी तरह से अबू बकर को जो खूबी हासिल है, नबी सल्लम की ज़िंदगी में 11 दिन अबू बकर ने आपके मसल्ले पे खड़े होकर नमाज़ पढ़ाई। इनमें एक 11वां जो दिन था, उस दिन अल्लाह के नबी ने कहा मैं खुद पढ़ाऊँगा, ईशा की नमाज़ थी, आपको वज़ू करवा कर लाया गया। 3 दफ़ा आप उस नमाज के दौरान बेहोश हुए, आखिर हाथ के इशारे से अबू बकर को बुलाया कि आपको नमाज़ पढ़ाएं लोगों को, यानी ज़िंदगी में बता दिया कि मेरे बाद अब इस इमामत के मसल्ले पे अबू बकर होंगे। और इंतकाल के दिन भी अल्लाह के नबी ने नमाज़ फजर अबू बकर सिद्दीक के साथ मिलकर अदा की। चाश्त के वक्त अल्लाह के नबी की रूह परवाज़ होती है, और ये वो वक्त था अब जहाँ अबू बकर के बड़ा बनने का वक्त था। देखिए, नबी की मौजूदगी या लीडर की मौजूदगी में सब ठीक होता है, सारे ही अपने आप में रहते हैं, उसके बाद बड़े मसले होते हैं। इतना बड़ा मामला था सहाबा के लिए अल्लाह के नबी की वफ़ात, कि हज़रत अनस कहते हैं कि मदीना की तारीख में सबसे खूबसूरत दिन वो है जिस दिन आप हिजरत करके मक्का से मदीना आए, और मदीना की ज़िंदगी का तारीख तरीन दौर वो है जिस दिन अल्लाह के नबी कूच किए। साहबा की होश ही नहीं थी, कितनों में जिसमें उमर को भी यकीन नहीं था, ऐसे वक्त में अबू बकर सिद्दीक ने उम्मत को संभाला। किस तरीके से फिर आप नबी के पास है, अबू बकर को ये खूबी हासिल है कि नबी सल्लम की पेशानी पे बोसा दिया, आपकी डेड बॉडी को। इसी से सिर्फ इससे मसला अखज़ है आज भी, कि डेड बॉडी को किस किया जा सकता है। दलील अबू बकर है कि उन्होंने अल्लाह के नबी के साथ किया था, और कहने लगे कि मेरे माँ बाप आप पर फिदा हों, यही एक मौत आप पर लिखी हुई थी जो आप पे वारिद हो गई, अब अल्लाह आपको 2 मौतें नहीं देगा। फिर आपके चेहरे पे कपड़ा डाला और आके लोगों में ऐलान किया कि अल्लाह के नबी चले गए। और उमर को कब होश आया, जब अबू बकर ने ये आयतें पढ़ दीं, वमा मोहम्मदुन इल्ला रसूल। साहबा कहते हैं मैं ऐसे लगा कि ये आज आयत उतरी है, हालांकि ओहद के मौके पे आज से 7 साल पहले तकरीबन उतर चुकी थी। और साथ ही फिर ये भी कह दिया, फमन का न मिन कुम याबुदुल मोहम्मदन फ़इन मोहम्मदन कदमात, फमन का न मिन कुम याबुदुल्लाह फ़इन अल्लाह हय्युल्ला यमुत। तुम में से जो मोहम्मद सल्लम की इबादत करता था, यानी उनके लिए नेकी के काम करता था, वो अब जान ले कि वो तो चले गए, तो जो अल्लाह के लिए करता था वो जान ले कि अल्लाह जिंदा है। यानी मुराद है कि अपने काम ना छोड़ो, किसी के होने ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है, अल्लाह की ज़ात तो मौजूद है। और फिर सहाबा में एक कोहराम मच गया, और अभी ये बात समझ ही नहीं आ रही थी कि अल्लाह के नबी के साथ क्या मामला किया जाए, किस तरह हो, कफन दिया जाए, दफन, वो तो एक अलग खबर है, लेकिन अब अगला क्वेश्चन ये था कि आपके बाद खलीफा कौन होगा। इस वक्त आप देखिए कि जब बहुत सारे मुश्किल सवालों में से एक इतना बड़ा डिसीजन लेना हो, तो इस वक्त में बहुत सोचा नहीं जा सकता। साहबा ने कहा कि इशारे जमा कर लेते हैं अल्लाह के नबी की ज़िंदगी में, नंबर 1 अपनी ज़िंदगी में इमामत के मनसब पे, दूसरी बात आपने अपनी बीमारी के दिनों में कहा कि सारे दरवाजे मस्जिद नबी में जो आते हैं ना बंद कर दो, पहले दरवाजे थे, हर हुजरे का दरवाज़ा था, एक दरवाज़ा खुला रखा और वह अबू बकर सिद्दीक के घर का था। ये चंद चीज़ों को जमा करा तो पता क्या चला कि अबू बकर सिद्दीक ही इस काबिल थे, हालांकि आपको पता है कि जिस्मानी तौर पे इतने कमज़ोर, इतने पतले थे कि अपनी तहबंद जब बांधते थे तो वो नीचे चली जाती थी। रो पड़े, अल्लाह के नबी मेरे टखने ढक जाते हैं, तो क्या अल्लाह मेरे से कल बात नहीं करेगा। कहा तू उनमें से नहीं है, यानी अल्लाह को पता है कि इधर गोश्त ही नहीं है जिस पे कपड़ा ठहरे, कपड़ा बार बार नीचे लुढ़क जाता था। तो अबू बकर सिद्दीक जिस्म के इतने कमज़ोर थे लेकिन इरादों के इतने पुख्ता थे कि अल्लाह के नबी के बाद जो हालात दिगरदूँ हुए, अगर उसमें से कुछ बातें आपके सामने रख दूँ तो आपको इंशाल्लाह अंदाज़ा होगा कि वाकई फिर इनके इतने दर्जे क्यों हैं। नबी की ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों ने अच्छे काम किए लेकिन नबी के बाद जो हालात थे उसमें अबू बकर का बहुत बड़ा हाथ है, जिसको आप कह लीजिए कि पत्थर बन के खड़े हो गए, दीवार बन के खड़े हो गए। फितनों के आगे एक ऐसी दीवार थी आप कि जिसको कोई रोक नहीं सकता। और इस तरीके से लोगों में जो इख्तलाफ थे, कई लोग तो फिर के वो नबी हैं, फौत हो गए हैं, चलो फिर हम भी जाते हैं, रिस्क नहीं ले पा रहे थे वो, अब तो सारे ही दुश्मन हम पे कूद जाएंगे और ये होगा और वो होगा, तो ऐसा नहीं किया। अबू बकर ने वहाँ लोगों को पकड़ा, बैत की, और फिर इसी तरह से आपने इतना खूबसूरत खुतबा दिया कि लोगों, मैं तुम पर वली बनाया गया हूँ हालांकि मैं तुमसे बेहतर नहीं हूँ, और मैं नेकी करूँ तो मेरी मदद करना और अगर मैं बुराई करूँ तो मुझे सीधा कर देना, कौन कहता है ऐसे। और सच बोलना अमानत है, झूठ बोलना खयानत है। तुम में से कमज़ोर मेरे नज़दीक कवि है, और कवि इस वक्त तक कमज़ोर है जब तक वो लोगों से छीना हुआ माल वापस ना कर दे। ये होती है लीडरशिप क्वालिटीज़। फिर आपने कहा कि लोगों, जिस कौम ने जिहाद को छोड़ दिया अल्लाह उसको जलील कर देता है, और जहाँ एलानिया फोहश काम शुरू हो जाएं अल्लाह उस पर तरह तरह के अजाब नाजिल करता है। देखिए एक एक जुमला आज फिट हो रहा है उम्मते मुस्लिमा पे। कहा लोगों, जब तक मैं अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करूँ तो तुम मेरी भी बात मानना, और अगर मैं उससे खिलाफ कोई काम करूँ तो तुम मेरा हाथ पकड़ लेना। इस तरह कौन सा लीडर है या ऐसा कौन सा हुक्मरान और वजीर और सदर है जो अपने आप को पेश करता है। ये बैत हुई, इसके बाद नबी सल्लम को दफनाने का मामला था। अब सवाल था गुसल कैसे दें, हर साहबी चाहता था हम करें ये काम, हमें ये ऑनर मिले, लेकिन अबू बकर ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। अल्लाह के नबी को गुसल कपड़ों समेत दिया गया, वो एक अलग कहानी है, पलट जाएगी। लेकिन इख्तलाफ का बीच में सालिस अबू बकर, हर जगह जहां दो सहाबा की बात आई अबू बकर सालिस। अच्छा ठीक है, ठीक है। अब तीसरा सवाल उठ गया तदफीन, मैंने एक लेक्चर दिया था, सिर्फ वो फितने गिनाए थे जो नबी सल्लम की वफात के साथ ही शुरू हो गए थे, और अगर अबू बकर जैसा हो ठंडे स्वभाव का खलीफा ना होता ना, तो उस वक्त उम्मत में खाना जंगी शुरू होती। अगला इशू छड़ा हो गया, गुसल के बाद दफन कैसे करें। मक्का वाले कह रहे हैं आपको मक्का लेके जाएंगे, जैसे हम बहुत प्यार से पाकिस्तान और इंडिया ले जाते हैं अपनी डेड बॉडीज़ को। सारी ज़िंदगी आप रहे नॉर्वे और सारी ज़िंदगी रहे अमेरिका, और मरने के बाद कफन दफन आपको वहाँ का चाहिए। लोगों ने कहा इनको मक्का लेके जाएंगे, मदीना वालों ने कहा हम नहीं जाने देंगे, हमारे पास जब ज़िंदगी में थे तो अब क्यों ना हो, किधर इनको दफन करें, क्या करें। फिर एक सवाल था कि इनको जन्नतुल बकी में करें कि किधर करें, उसकी बड़ी शान है। उस वक्त इख्तलाफ के सामने अबू बकर बोले, मा मिन नबीयन, कोई नबी ऐसा नहीं मगर ये कि वो जहां फौत हो उसको वहां दफन किया जाता है। उम्मत चुप हो गई, हर बात में हदीस पेश की, कुरान और हदीस की दलील पे उम्मत के फितनों को हल किया। आज हम इंसानों में खोए रहते हैं, अल्लाह रसूल की बात पीछे डाल देते हैं, तो आपको फिर उसी बिस्तर मुबारक पे जहाँ आप फौत हुए थे वहीं ज़मीन खोद के हुजरे आयशा में दफन कर दिया गया। अबू बकर सिद्दीक ने नबी सल्लम का जो वजूद था उसको टच किया, और इस तरीके से यानी आपको फिर प्यार से दफन किया गया। अब तो बस कह लें कि अल्लाह के नबी के, वो कहते हैं ना कि पर्दा करने की देर थी, चारों तरफ से उम्मत के ऊपर ऐसी घटाएं छाईं कि अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि हम गिरोह अंबिया का कोई वारिस नहीं, जो कुछ छोड़ते हैं वो सदका है। सवाल ये था कि अल्लाह के नबी के विरसे का क्या किया जाए, जो आपने थोड़ा बहुत छोड़ा। अबू बकर ने हदीस पेश कर दी कि नबियों का माल अल्लाह के रास्ते में ही जाता है। फातिमा भी जिंदा थी उस वक्त, बेटी मौजूद थी, लेकिन अल्लाह के नबी की जो भी चीज़ें थी उसमें से उनको कुछ हिस्सा नहीं मिला। और जो बाहर से फितने थे उसके लिए तो एक पूरी नशीस चाहिए। मैं आपको चंद रिकमेंडेशन दूंगी, जब भी अभी आजकल तो आप बिजी हैं ना, बाद में मौका मिले तो आप अबू बकर का दौरे खिलाफत पढ़ें। रात को मैं पढ़ रही थी और मेरा दिल कर रहा था 2 घंटे का सेशन हो जाए ना, तो मैं आपको एक एक जंग का किस्सा सुनाऊँ। बहुत छुपा हुआ ये दौर, हम लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी कहाँ है। ये तो सीरत के अंदर जो कुछ पढ़ पढ़ा ली, लेकिन आपको तो अल्लाह के नबी के बाद नंबर एक यहूद और नसारा खड़े हो गए। उन्होंने कहा अब नबी चला गया ना, अब दोबारा हमारा दीन चलेगा। फिर दूसरी बात है, जो अरब के बद्दू थे इर्द गिर्द वो सब मुर्तद हो गए। जैसे यद खुलू न फी दीन अल्लाह ही अफवाजा हुआ था ना नबी की ज़िंदगी में, इसी तरह युखरिजू न फी दीन अल्लाह ही या मिनत दीन अल्लाह हुआ, گروہوں کے گروہ نکل گئے. تیسرا فتنہ اٹھ گیا منکرین زکوٰۃ کا, کہتے ہم نہیں زکوٰۃ دیں گے, یہ تو جزیہ لگتی ہے. وہ ابو بکر نے کہا تم نبی کی زندگی میں اگر ایک دھاگے پہ بھی زکوٰۃ دیتے تھے اور اب نہیں دو گے تو ابو بکر تمہیں ارتداد کی سزا دے کے قتل کرے گا. سارے خوب, ابو بکر اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں, نہ کریں دشمن ہو جائیں گے, ہم افورڈ نہیں کر سکتے. کہا جو مرضی کہہ دو. ویسے میں اپنی زندگی میں ایک چیز دیکھتی ہوں کہ میں نے ابو بکر کو جس طریقے سے فرم ہوتا دیکھا نا, ادھر سے لیڈرشپ آتی ہے. ساری ٹیم ایک طرف ہے, سارا شہر ایک طرف ہے, ساری دنیا ایک طرف ہے, آپ کے پاس اگر دلیل حق کی ہے تو کھڑے ہو جائیں. اور یہی ہوا. پھر اسی طرح ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کر دیا, مسلمہ کذاب. تین کذاب, ایک عورت بھی کھڑی ہو گئی سجا نام کی. یہ فتنے تھے, اور ادھر سے لشکر اسامہ کو واپس بھیجیں, کیسے بھیجیں, کس کے ساتھ. ایسے وقت میں ابو بکر کے کمزور کندھوں پہ بوجھ پڑا. ابن مسعود کا غالباً قول ہے یا ابن عمر کا, کہتے ہیں اللہ کے نبی کے دنیا سے جاتے ہی ہماری یعنی امت مسلمہ کی کیا کیفیت تھی کہ کشتی مجدھار پہ یعنی سمندر میں اور نیا کا وہ چلانے والا نہیں, امت ڈول رہی تھی. اور ایسے وقت میں ابو بکر رکے. اور ساتھ ہی آپ دیکھیے وہ ملک شام میں جو قیصر کی طرف سے خبریں آ رہی تھی, اسی کے مقابلے میں تو آپ نے لشکر اسامہ تیار کیا تھا. بڑے بڑے صحابہ کی رائے بالکل ابو بکر سے فرق تھی. کئی دفعہ اس کاموں میں ایسا ہوگا, آپ کے اپنے قریبی بھی نہیں آپ کی بات مانیں گے, مان تو لیں گے لیکن سمجھیں گے نہیں دل سے. حکمت مانگی ہے کہ اللہ کبھی نہ ہو. تو ان سب کے ساتھ ابو بکر نے پھر ٹھنڈے صبح سے حکمت کے ساتھ اللہ کے نبی کی دیوی جو انسٹرکشنز تھی اور آپ کی ٹریننگ کے اندر جو رہے اس کی روشنی میں آپ نے ٹیکل کیا, اور پھر اللہ نے وہ سارے فتنے بھی دبا دیے. آپ نے فرمایا جو تم نبی کی زندگی میں کرتے تھے وہ آج بھی کرو گے. اگر آپ نے اسامہ کو لشکر اسامہ کا امیر بنایا تو آج بھی وہی جائے گا, اور اگر آپ ایک رسی کے برابر بھی کچھ دیتے تھے تو آج بھی دینا پڑے گا. اور اس طریقے سے پھر ابو بکر آپ کے سامنے کھڑے رہے, اور ایک آپ کو تھا کہ آپ خود کھڑے ہو گئے, کوئی نہیں ساتھ جانے کو تیار, اور خود ہی کھڑے ہو گئے. میں نے کہا میں اکیلا جاؤں گا ان کے ساتھ جہاد کرنے. پھر ابو بکر کو جاتا دیکھا تو علی پیچھے سے بھاگتے ہیں, اور کہا نہیں آپ اپنی تلوار ادھر رکھے, آپ خلیفہ ہیں, اگر آپ کو کچھ کہہ دیں گے ہم پہ مشکل ہوگی, میں جاتا ہوں. ایسے لیڈرز کو کھڑا ہونا پڑتا ہے, یہ آسان کام نہیں ہے, اس کے لیے آئرن نروس چاہیے ہوتی ہیں. لیکن ریلیکسڈ, بوجھ نہیں, سٹریس نہیں, ٹینشن نہیں. لیکن پھر اللہ کے نبی کے سکھائے ہوئے ابو بکر کو اللہ نے کیا عزتیں دیں. صرف دو سال کا دور خلافت ہے, اونلی 2 ایئرس. اللہ نے نہ صرف یہ کہ یہ سارے فتنے دبوائے جو آپ کے دور میں اٹھے تھے, بلکہ فتوحات بھی ملی. اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو آپ نے امیر لشکر بنا کر ان لوگوں کی طرف بھیجا جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا, اور نصیحت کی کہ دیکھو اگر وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے تو واپس آ جانا, نماز ادا کرے, زکوٰۃ دیں, تو مطلب ان کے ساتھ دعویٰ کرو اور واپس آ جاؤ, یعنی زمین کے ٹکڑے نہیں چاہیے. اور اسی طرح سجا, طلحہ اور مسلمہ, یہ تین تھے جھوٹے نبوت کے دعوے دار, لکھ لیں. سجا عورت تھی, مسلمہ اور طلحہ مرد تھے. انہوں نے کہا کہ ہم نبی ہیں, اب نبی تو چلے گئے تو اب کوئی نبی تو چاہیے. ابو بکر نے پھر ان کو تلوار کے گھاٹ پر مسلمہ کو قتل کرایا. سجا بھاگ گئی اور طلحہ جو تھا وہ بعد میں ایمان لے آیا تھا اللہ کے نبی کے اوپر. تو اندر کی بغاوتوں کو ختم کیا, باہر فتوحات ہوئیں, ملک شام کا ایک بڑا حصہ مسلمانوں کو مل گیا تھا ابو بکر کے دور میں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ فتح شام اور اس کی فتوحات ابو بکر کی, اور ابو بکر کے کارناموں میں قرآن کا جمع کرانا. قرآن پاک کا جو آج آپ کو مجھے ایک رخ دکھتا ہے, اس کا ابتدائی کام حضرت ابو بکر کے دور میں ہو گیا. ابو بکر کی آخری گھڑیاں لے لیں, ہے بیچ میں بہت کچھ لیکن وقت پورا ہونے والا ہے. 22 جمادی الاخرہ 12 ہجری, مغرب اور عشاء کا درمیانی وقت تھا, اور ابو بکر پر نزات آ رہی تھی, اور اپنی بیماری کے اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اشارہ کر دیا, مسکرائے. فعل لما یرید کا نام لیا, قرآن کی آیت ہے. لوگوں نے کہا ابو بکر ہم کسی ڈاکٹر کو بلا لیں, حکیم کو. کہنے لگا حکیم کو دکھا دیا, اللہ کی طرف اشارہ تھا الحکیم. کہا وہ حکیم کیا کہہ رہا ہے؟ کہا اس وہ کہہ رہا ہے فعل لما یرید, میں جو چاہوں گا وہ کروں گا. لوگوں کو نہیں سمجھ آئی لیکن اصل میں ان کی اپنی موت کی خبر تھی. بالکل جب نزاع کی کیفیت ہوئی تو اپنے بچوں کو بلایا, کہنے لگے یہ نئی چادریں, اس میں مجھے کفن نہیں دینا, پرانی چادروں میں کفن دینا جو میں پہنے ہوا ہوں. کیوں؟ نئے کپڑوں کے حقدار जिंदा लोग होते हैं, मरता नहीं जी। और वसीयत की कि मुझे नबी के पहलू में दफन करना, और अस्मा बिनते उमैस बीवी थी इनकी, वो मुझे गुसल दें और अब्दुर्रहमान उनकी मदद करें। और फिर अपने माल में से पांचवा हिस्सा फी सबीलिल्लाह खैरात की वसीयत की, और कहा जितना हिस्सा माले फै में अल्लाह ताला मंजूर फरमाता है बस उतना ही मैं लूंगा। पांचवा हिस्सा कितना होता है आपको पता? अंदाजा लगा लीजिए, 100 में से 20 रुपए बच्चों को दिए, 80 सदका कर दिए। और जितना खिलाफत के इन 2 सालों में माल मिला था, कहा ये सब मेरी तरफ से वापस कर दो। जब दुनिया से जाने का वक्त करीब आया, कहने लगे आज कौन सा दिन है? लोगों ने कहा दुशंबे का दिन है। कहा अगर मैं आज रात मर गया तो कल का इंतजार ना करना, मुझे वो घड़ी बड़ी महबूब है जो मुझे नबी सल्लम से करीब कर दे। मतलब क्या? आपका आपकी हमसाई की मिलेगी। आप जरा सोचे तो सही, ये लोग दुनिया से क्या क्या करके गए। फिर इनकी वफात पे सहाबा और ख़ास तौर पर इनकी बेटी आयशा ने पूरा वास दिया था। कहने लगी कि प्यारे अब्बा जान, अल्लाह आपके चेहरे को नुरानी करे और आपको कोशिशों का नेक फल दिलाए। आपने अपने उठ जाने से दुनिया को जलील और उकबा को अजीज कर दिया। अगरचे आपकी मुसीबत रसूलुल्लाह के इंतकाल के बाद सबसे बड़ी मुसीबत है। जाहिर है पहले शौहर गए, अब बाप जा रहे हैं, और आपकी मौत सब हादिसों से बड़ा हादसा है, लेकिन किताबुल्लाह सब्र पर नेक अजर का वादा दिलाती है। लिहाजा मैं आप पर सब्र करके वादा इलाही के मुताबिक इस वादे को पूरा करना पसंद करती हूँ और आपकी मगफरत तलब करती हूँ। अल्लाह आपको इस रुख्सत करने वाली का सलाम पहुँचाए जिसने आपकी जिंदगी से नफरत की, ना आपके हक में कजा इलाही को बुरा जाना। इतने खूबसूरत लफ्ज हैं। बेटी कह रही है कि मैं आपकी मौत पे भी राजी हूँ। फिर उमर फारूक खड़े होते हैं, कहे खलीफा रसूल, आप अपनी उम्मत को बड़ी तकलीफों में छोड़ के जा रहे हैं, आपकी तो गर्दे राह तक पहुंचना भी मुश्किल है, मैं कैसे आपके कदमों पे चलूं? यानी उमर की ये बेबसी है कि इतनी बड़ी मिसाल देकर, इतनी खूबसूरत लीडरशिप देकर जा रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा? और हजरत अली बोले, ए अबू बकर, अल्लाह पर रहम करे, बाखुदा आप तमाम उम्मत में सबसे पहले ईमान लाए और सबसे ज्यादा ईमान को अपना खुल्क बनाया, सबसे बढ़कर कामिलुल यकीन थे, सबसे ज्यादा गनी थे, सबसे बढ़कर नबी की हिफाजत करने वाले, और सबसे बढ़कर इस्लाम के खिदमतगार थे, और सबसे बढ़कर इस्लाम के दोस्त थे, और खुल्क और फजले सीर फजल में और सीरत और सोहबत में नबी से सल्लम से आपको सबसे ज्यादा निस्बत थी। यानी आप सबसे ज्यादा आपसे प्यार करते थे। अल्लाह आपको इस्लाम और रसूल और मुसलमानों की तरफ से जजाय खैर दे। आपने उस वक्त रसूलुल्लाह की तस्दीक की जब लोगों ने तकजीब की, आपने उस वक्त गमखारी की जब औरों ने बुखल किया, जब लोग नुसरत और हिमायत से रुके रहे, आपने उस वक्त रसूल का साथ दिया, आपको अल्लाह ने अपनी किताब में सिद्दीक फरमाया और आपकी शान में वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ी फरमाया। बाखुदा आप इस्लाम का किला थे, कुफार को जलील कर देने वाले थे, ना आपकी हुज्जत में गलती होती ना आपकी बसीरत में जोफ आता। जुबन यानी बुजदिली कभी आपको छू कर नहीं गई। आप पहाड़ की मिसल मजबूत थे जिसे ना तुंद हवाएं हिला सकती हैं और ना उखाड़ने वाले उखाड़ सकते हैं। आप ऐसे ही थे जैसा कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, यानी ज़ईफुल बदन, मोमिन को दुबला पतला होना चाहिए, कवियुल ईमान, ईमान की मजबूती हो, मुनकसिरुल मिजाज, आजजी वाला। अल्लाह के यहाँ आप बड़े मर्तबों पर थे, जमीन पर बुजुर्ग और मोमिनों में अफजल थे। आपके सामने कोई बेजा तमा और नाजायज ख्वाहिश ना कर सकता था। आपके नजदीक कमजोर कवि और कवि कमजोर था, यहाँ तक कि ताकतवर से लेकर जयीफ को इसका हक दिलाया जाए। अल्लाह हमें आपके अजर से महरूम ना करे और आपके बाद हमको गुमराह ना करे। एक एक जुमले पे मैं ये सोच रही थी कि मेरे मरने पे लोग क्या कहेंगे। ये है आवाज़ खल्क नकारे खुदा। हम अपनी भी तो सोचें कि हमारे साथ क्या होगा, हम दुनिया से जाएंगे तो लोग क्या करेंगे। अगर आप अबू बकर के नाम को लिख कर ना, जिसको कहते हैं ना मेड ऑफ इंग्रेडिएंट्स, लिखे तो 4-6 जुमले लफ्ज़ लिख लिए। नंबर एक, इत्तबाए सुन्नत कूट कूट के भरी हुई थी, आपके कदमों पे कदम रख के जीना चाहते थे, इसकी बहुत सी मिसालें हैं। दूसरी चीज़, आपके वजूद का हिस्सा जो लगती है वो मोहब्बतें इलाही और रसूल की मोहब्बत, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत कूट कूट के भरी हुई थी। और कहते थे कि मुझे 3 चीज़ें दुनिया में बड़ी प्यारी हैं, نمبر ایک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی طرف دیکھنا، آپ پر اپنا مال خرچ کرنا، اور میری بیٹی کا آپ کے گھر ہونا. آپ کو تھا کہ عائشہ سے شادی کیوں کی تھی اللہ کے نبی کی ابو بکر نے؟ کہ مجھے نبی کی رشتہ داری مل جائے. آج تو لوگوں کو بڑا رونا آتا ہے، ہائے چھوٹی سی عائشہ اتنی بڑی عمر کے شخص سے بیاہی گئی. ابو بکر نے ریکویسٹ کی تھی میری بیٹی کو قبول کر لے. اللہ ہو، یہ پیار، یہ باتیں اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ اللہ ابو بکر پر رحم کرے، انہوں نے اپنی بیٹی میری زوجیت میں دی، مجھے دار الہجرت تک پہنچایا اور بلال کو آزاد کرایا. تیسرا وصف ابو بکر کا، نماز. نماز میں جھک جاتے تو خشک لکڑی کی طرح ہلنے میں نہ آتے، یعنی سیدھے کھڑے ہوتے. ایک راوی ہیں سالم، وہ کہتے ہیں ابو بکر نے ان سے فرمایا، آؤ سحر تک اقامت کریں، نماز ہی میں شب گزاریں. پھر فرمایا، سحر تک میرا دروازہ بند کر دو. رات کو کھڑے ہوئے، سحری تک پوری رات قیام کیا اور کا دروازہ بند کر دو. اس کا پتہ چلتا ہے کہ رات کو بھی لوگ ان سے فائدہ لینے آتے تھے. چوتھی چیز ابو بکر کی شخصیت میں روزہ تھی. نفلی روزے رکھتے مگر کون سے بھلا؟ میں نے ایک جگہ رمضان کے لیکچرز میں سنائی تھی بات، گرمیوں میں زیادہ روزے رکھتے تھے، سردیوں میں نہیں. کیوں بھلا؟ کہتے تھے کہ گرمی کے روزے کا اپنا مزہ، لمبا بھی اور گرم بھی. پانچویں چیز، فصاحت، شیریں کلام. فصیح کیا؟ یعنی چھوٹی بات میں بڑی بات، اور خوش کلام تھے. چھٹی چیز، تواضع تھی. ایک بڑھیا رہتی تھی گھر مدینہ میں، تو اس کی خبر گیری کرتے، اس کے کام کاج کرتے، وہ پانی بھر آتے اور اس کے آنے سے پہلے کام کرتے. حضرت عمر کو شک ہوا کہ ابو بکر کہاں جاتے ہیں، اور جب دیکھا تو ابو بکر ان کے گھر کی صفائی کرتے تھے. اور ابو بکر 3 برس ہم لوگوں کے پاس رہے، 2 برس قبل خلافت اور 1 برس قبل زمانہ خلافت میں. اور قبیلے کی لڑکیاں اپنی بکریاں ان کے پاس لے جاتی اور وہ ان کو دودھ دھو دیتے تھے، یعنی خدمت کرتے تھے، دودھ نکال کے دیتے تھے، چھوٹی بچیاں جو اپنی بکریوں کا دودھ نہ نکال سکتی. پھر اگلی خوبی ان میں کیا تھی، کہ جب کبھی اپنے رشتہ داروں میں جاتے تو ماتم میں شامل نہیں ہوتے تھے، یعنی آپ کہہ لیں کہ غلط رسموں میں شریک نہیں ہوتے تھے. ہماری طرح کیا کریں، پھر رشتہ دار ناراض ہوں گے. جاتے ان کو سمجھاتے، وہاں کی عادت ہی ماتم کرنا، تو ماتم نہیں کرتے تھے. کہتے تھے اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے، موت کے بعد جو کچھ ہونا ہے موت اس سے آسان تر ہے، اور جو گزر گیا وہ شدید تر ہے. اللہ کے نبی کے انتقال کو یاد کرو تو تمہیں اپنی کم لگے گی اور اللہ کے پاس اجر ہے. پھر اگلی ان کی شخصیت کی ایک خوبی تھی، جود و سخا، بہت جنرس تھے، جس پہ تھوڑی بات بھی کی. اور ابو بکر صدیق کی اگلی خوبی تھی شجاعت، بہادر، اللہ کے نبی کا دفاع کیا. اگلی چیز، ایمان. پھر زہد اور ورع، آخری درجہ آتا تھا تقویٰ کا، ورع وہ تھا ان میں. اور فہمے قرآن، جس طرح یہ قرآن کو سمجھے ویسے کوئی نہیں سمجھا. اس مثال آپ کو دی تھی سورت نصر کی تفسیر میں، کہ آپ اس صورت سے سمجھ گئے تھے کہ اللہ کے نبی کے انتقال کا وقت آ گیا. پھر علم حدیث میں بڑے پختہ تھے، بہت لمبی طوال ہے. پھر خوابوں کی تعبیر جانتے تھے. پھر علم الانساب، عرب کے بڑے نساب تھے، یعنی لوگوں کے نسب جانتے تھے. اور حضرت عائشہ نے اپنے باپ کی اس خوبی پہ بہت پیاری بات کی ہے، جو پھر انشاءاللہ اگر کل ڈسکشن میں موقع ملا تو آپ کو سنا دوں گی. یہ ہے جس کو کہتے ہیں دا لائف یو کین لیو، یہ ہے کوالٹی لائف. ایک بندہ دنیا سے گیا اور اتنی گواہیاں، اتنی خوبیاں. میں نے ابھی پورا حصہ سکپ کیا ہے جو دورے خلافت کی جنگوں کا تھا. میں نے سوچا تھا رات کو کہ میں آپ کو دوں گی، لیکن مجھے پتا تھا کہ میں نہیں دے سکتی، ٹائم ہی نہیں ہوگا. لیکن کم از کم آپ کو یہ تو اندازہ ہو گیا نا کہ وہ کوئی خاص شخصیت تھی. اللہ کو غلطی نہیں لگتی، یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ان کے نقش قدم پہ چلائے، اللہ ہمیں بھی صدیقیت کے مقام پہ فائز کر دے. اور بڑے پیار سے کہے کہ رضی اللہ عنہ و رضوا ذلک لمن خشی ربہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.